नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रूपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मॉर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।